ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. तो आज के इस 22 जुलाई 2014 के संध्या जागृति में आप सबका भव्य स्वागत है, क्योंकि आप लोग भव्य संख्या में आज आए हो. इसलिए जो विशेष डिपार्टमेंट को आज बुलाया गया था, क्या फार्मेसी पैथोलॉजी और TFVF और परचेस और राजीव गांधी कस्टमर केयर और रेडियोलॉजी, कौन कौन है रेडियोलॉजी, वेरी गुड, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है. हा? और कीर्तन करने वाले माताजी का भी धन्यवाद है फार्मेसी से. तो इस तरह से जब हम लोग उस प्रोग्राम में कुछ करते हैं ना काम, तो बड़ा अच्छा लगता है. तो जन्माष्टमी हो रही है और हम लोग प्रेक्षक बन के आए, तो आपको इतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन जन्माष्टमी के आयोजन में आपने अगर सहायता किया ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा. जैसे आप बोलेंगे कि हमारी जन्माष्टमी है, तो हम लोग उसमें छोटा मोटा जो भी काम करेंगे उसका आयोजन में, तो तुरंत आपको आनंद आएगा. क्या कारण है इसका? क्योंकि सेवा करने से आत्मा का कृष्ण भगवान से संबंध जुड़ जाता है, कनेक्शन हो जाता है. और जैसे ही वो सेवा के माध्यम से कनेक्शन होता है, तुरंत आनंद का अनुभव होता है. और जितने आप पीछे होकर खड़े हो जाएंगे कि तो अपने को खाले देखना है, उतना आपको उसका आनंद नहीं आएगा. फिर आपको लगेगा समोसा में बहुत नमक कम था और ड्रामा में लाइट बराबर नहीं था, कीर्तन में हारमोनियम का आवाज ज़्यादा था, बहुत ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा जब आप प्रेक्षक बन के खड़े हो जाओगे. इसलिए कुश्ती के अखाड़े में उतरना चाहिए, फिर कुश्ती करने में क्या आनंद मिलता है आपको अनुभव होगा. हरे कृष्णा. तो अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पास में आ रही है, तो आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था, और जन्म होते ही उनको गोकुल भेजा गया था जो जमुना जी के पार था. जमुना जी के उस पार मथुरा है, इस पार गोकुल है. रातों रात उनको पहुंचाया गया गोकुल में, और यशोदा में, यशोदा के गोद में छोड़ के आए वसुदेव जी. तो वहाँ से गोकुल से, गोकुल ही दक्षिण दिशा में है, और वहाँ से उत्तर दिशा में और बाकी दोनों ओर ब्रजभूमि फैली हुई है. हाँ, ब्रजभूमि का मतलब वो है जिसमें भगवान कृष्ण ने लीला किया. ब्रजभूमि का मतलब वो है जहाँ पर भगवान की जो गायें हैं वो निर्भय होकर व्यवहार करती हैं, कोई भय नहीं होता उनके मन में, कोई कोई उनको जख्मी करेगा या कोई कष्ट देगा या पीड़ा देगा या कोई उनको जीवन की भय, जीवन का भय उनके मन में होगा, कोई मारेगा उनको, कत्ल करेगा उनका, इस प्रकार का किसी प्रकार का मन का शरीर का भय जहाँ पर गायों को नहीं होता है. और जो जिस जगह पर निर्भय होकर विहार करते हैं उस जगह को ब्रज भूमि कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है. और पुराने जमाने में पूरा भारतवर्ष जो था वो ब्रज भूमि था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में गौओं की पूजा की जाती थी और गाय देवता मानते थे लोग उनको, और सब जगह पर गाय निर्भय होकर विहार करती थी, कोई डर नहीं उनको, उनके मन में, गाय के मन में इतनी शांति और इतना प्रेम उनको मिलता था लोगों के द्वारा, इंसान के द्वारा, कि उनके जो थन थे, दूध से भरे हुए थन थे ना, वो बूंद बूंद टपकते थे मिल्क दूध उससे, वो सारी भूमि जो है वो गिली रहा करती थी. आप सोच सकते हो ऐसा जमाना कैसे होगा, गाय ऐसे घूम रही है प्रेम से और उनके थन जो है वो जमीन तक लटके हुए हैं और उसमें से बूंद 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 दूध गिर रहा है, सब जगह पर दूध गिर रहा है और सब भूमि जो है वो गीली है उनके प्रेम से। आज गाय को हाथ लगाते हो आप तो गाय तुरंत हमको मारने को आती है, क्योंकि गाय को आप जैसे मनुष्यों ने बहुत कष्ट दिया हुआ है, इसलिए आप जैसा मनुष्य सामने आया तो लगेगा ये भी कष्ट देगा, इसलिए वो पहले से ही, हम लोग क्या बोलते हैं, मारकुटी गाय है। हम लोग को मालूम है क्या गाय मारकुटी कैसे बनती है? जब उसको खुद मारा जाता है तो वो मारकुटी बनती है, जब उसको प्रेम मिलता है तब वो प्रेम देती है। ये रहस्य मुझे मेरे गुरुदेव ने एक बार गोकुल में बताया था, जब गोकुल में वो गाय के पास खड़े होकर गाय को ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे थे तो वो गाय भी उनको हाथ लगाने देती, गर्दन ऊपर कर रही थी, इधर भी खुजाओ। आप जानते हैं ना, ऐसे गाय को खुजाएंगे आप तो ऐसा गर्दन ऊपर करेगी, बोले इधर खुजाओ, इधर मैं खुजा नहीं सकती, इधर जरा खुजाओ। इसका मतलब क्या है, उस गाय को बहुत प्रेम मिला हुआ है। जो हमारे जैसे दो हाथ दो पैर वाले इंसान हैं, ऐसे लोगों से उनको प्रेम मिला हुआ है, इसलिए वो आपको विरोध नहीं करती, आपको समझते कि ये उनके जैसे ही होंगे। इंसान का भी ऐसे होता है, आप रेलवे विंडो पर जाएंगे तो आपको ऐसा जोरदार आंसर मिलेगा एकदम, औरत हो या आदमी हो, विंडो के पीछे कोई बैठी हुई है औरत आदमी तो आपके ऊपर गुस्सा से ही बात करेंगे वो, क्योंकि दिन भर उनके ऊपर लोग गुस्से से बात करते हैं, इसलिए वो आपसे गुस्से से बात करते हैं। तो जो इंसान को बहुत लोगों ने कष्ट दिया है वो दूसरों को भी कष्ट देते रहता है, और जो इंसान को बहुत प्रेम मिला है माता पिता से भाई बहनों से, वो सबसे बड़े प्रेम से व्यवहार करते हैं। आप सोच के देखो, विचार करके देखो कि आपके परिवार में कौन खड़ूस है और कौन शांत है, जिसको बचपन में बहुत प्रेम मिला है, बिना किसी पीड़ा के बड़ा किया गया है, वो बड़े होने के बाद दूसरों से भी बहुत शांति से और प्रेम से व्यवहार करेगा। लेकिन इसको बचपन में बहुत कष्ट दिया गया है, टीचर ने मारा है बहुत, पिताजी ने बहुत मारा है, बड़े भाई ने बहुत मारा है, किसी पड़ोसी ने एब्यूज़ किया है उसको, शरीर के ऊपर अत्याचार किया है उसके ऊपर, बड़ा होकर एकदम विद्रोही बनेगा, गुस्से वाला बनेगा और बदला लेने का कोशिश करेगा जो उसके ऊपर अत्याचार किया गया। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार से हम समझ सकते हैं कि उसके पीछे उसके ऊपर क्या क्या बीती हुई है। कोई व्यक्ति बहुत प्रेमी है, बहुत शांत है, बहुत सबको हेल्प करने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको बचपन में बहुत हेल्प की गई है, बहुत प्रेम दिया गया है, बहुत देखभाल की गई है उसकी, उसकी भावनाओं का बहुत कदर किया गया है, उसको बहुत ही, मराठी में कहते हैं ना आपुल की, बहुत ही प्रेम से उसको बड़ा किया गया है। तो ऐसी है ब्रजभूमि जो पूरी भारतवर्ष में पहले थी, अभी वो छोटी सी हो गई है, और उसमें भी गाय को काटते हैं, गाय को स्वार्थी रूप से पेश आते हैं, उनको दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मारते हैं, बछड़े को दूध पीने देते नहीं हैं, बछड़े के बिना ही दूध निकालने का प्रयास करते हैं, चलने को देते नहीं हैं, किधर गटर में घूमने लगता है उसको, खाना नहीं खिलाते हैं, केवल दूध निकालने का सोचते हैं, दूध देना बंद करेंगे तुरंत उसको कसाई खाने भेज देते हैं। ये हमारा आजकल का माहौल है, जहाँ गौओं की भूमि है वहाँ पर भी यही है, जहाँ पर गौओं की भूमि नहीं है बम्बई जैसे वहाँ पर भी यही हाल है। तभी मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, जो ब्रज भूमि के अंदर अनेक वन है, हाँ अनंत वन है वहाँ पर, भगवान ने जहाँ पर लीला किया है, लेकिन उसमें से 137 प्रमुख माने गए हैं, उनमें से 108 ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, उनमें से 12 सबसे ज़्यादा अच्छे भगवान को प्रिय माने गए हैं, उन 12 में से एक श्री वृंदावन वो सबसे अधिक भगवान को प्रिय माना गया है। भगवान को जहाँ पर लीला करना पसंद है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान का जहाँ पर लीला करना पसंद है वहाँ पर वो अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो वृंदावन नंबर वन में है, लेकिन वो 12 वनों में एक वन आता है, उसका नाम है बहुला वन। क्या नाम बताया मैंने? बहुला वन। ये मथुरा से जो गोवर्धन का रास्ता है ना, उस रास्ते पे आता है, मथुरा गोकुल और गोवर्धन के बीच में आता है बहुला वन, उसके पहले राधा कुंड भी आता है। तो इस बहुला वन में कथा ऐसी है, कि एक गाय उधर कुंड में, उधर दो सरोवर है, एक है संकर्षण कुंड और एक है मान सरोवर। हाँ, वो मान सरोवर जो है वहाँ पर राधा रानी एक बार रूठ कर आकर बैठ गई थी वहाँ पर, और छिपी भी हुई थी, मतलब किसी को पता नहीं ऐसे जगह जाकर बैठ गई वो। तो कृष्ण भगवान बड़े व्याकुल हो गए और वो सब सखियों को लेकर ढूंढते 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 आए और वहाँ पर उन्होंने उनको ढूंढ लिया। तो बहुत नाराज थी वो, तो राधा रानी को फिर कृष्ण भगवान ने सखियों के साथ मिलकर मनाया और फिर उनके साथ में लीला किया वहाँ पर। तो वो मानसरोवर जो है वहाँ पर है, और एक संकर्षण कुंड, वहाँ पर बलराम जी ने अपने सखाओं के साथ में आकर जल पिया था। ऐसा सुंदर महाबाहुला वन है, वहाँ पर अच्छे अच्छे पंछी अपने आवाज़ से भगवान को रिझाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल निकलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर हवा बहती है। हाँ, हर एक पंछी पशु अपने अपने क्रियाओं से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो उधर एक बार एक गाय जो है वो अपने दूध पानी पीने के लिए आती है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ से एक शेर आता है और वो शेर ऐसे हमला करने लगता है, तब गाय उसको कहते हैं रुक जाओ, मैं मेरे भूखे बालक को मतलब बछड़े को दूध पिला के दोबारा आपके पास आऊँगी, मालिक के घर जाके बछड़े को दूध पिलाकर वापस आऊँगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। आप बोलेंगे गाय कैसे बोली, शेर ने कैसे सुना? ये श्री वृंदावन धाम की खूबी है, इस वृंदावन धाम में हर जीव जो है वो मनुष्य जैसा है, यहाँ तक कि पत्थर, यहाँ तक कि जो निर्जीव वस्तु है वो भी सजीव है, वहाँ की चेतन कहा गया है, इसलिए वो वृंदावन धाम है। इसको कहते हैं चिंतामणि धाम। इस चिंतामणि धाम में हर एक वस्तु सजीव है, चिंतामणि यानी कि चेतनमय है। तो गाय भी भगवान से बात करती है, भगवान भी गाय से बात करते हैं, बाकी लोग भी गाय से बात करते हैं। आज ऐसा नहीं होता है क्योंकि कलयुग है ना ये। तो गाय ने वादा किया और शेर ने कहा ठीक है। तो गाय अपने घर गई और बछड़े से कहा कि आज तू अपना जी भर के दूध पी ले, क्योंकि मुझे जाना है शेर के मुंह अभी मरने के लिए, इसलिए तू जी भर के अपना मेरा दूध आज पी लेना। तो वहाँ से मालिक आता है ब्राह्मण, उसको भी माँ गाय कहती है कि मुझे आज, मैंने शेर से वादा किया है, वो इंतज़ार कर रहा है, मैं जा रही हूँ। तो बछड़ा कहता है मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा और मैं अपने आप को निशावर करूँगा। तो मालिक कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊँगा, आप दोनों भी अपना जीवन नहीं देंगे, मैं आपके लिए अपना जीवन दूंगा। आप सोच सकते हैं आज तो क्या होता है, थोड़ा दूध गाय ने कम कर दिया ना अपना, समझो उसको 20 लीटर जर्सी गाय दूध देती है, समझो बड़ा बड़ी गाय, देसी गाय तो 5-6 लीटर देती है, समझो 5-6 लीटर वाले ने 4 दिया समझो आज, तो 2 दिन के बाद में उसको कच्चर खाने भेज देते हैं, बोले इकोनॉमिक्स जो है ना वो जमता नहीं है इसके अंदर, उसका चारा पाउडर ये वो रखने का खर्चा, ये वो आदमी का खर्चा, दूध निकालने वाले आदमी का खर्चा, ये सब मिलके अगर इतना दूध नहीं आया ना तो फिर वो घाटे में जाएगा, तुरंत उसको कत्ल खाने भेज देते हैं। इतना आदमी गिर चुका है, एक गाय को एक जीव एक माता के रूप में देखने के बजाय एक मशीन के रूप में देखता है कि मशीन में इतना खर्चा किया है तो इतना प्रॉफिट आना चाहिए, नहीं तो मशीन को फेंक दो नया मशीन लो। हम लोग क्या करते हैं मोबाइल में है ना, रिपेयर नहीं होता है, बोलते साहब इतना क्या है, आउटडेट हो गया, वो एक साल पुराना हो गया अभी, वो काय को लेते हैं उसको, नया भी आया मॉडल उसको ले लो, सस्ता है उससे, तो रिपेयर नहीं होता है, यूज़ एंड थ्रो। तो यूज़ एंड थ्रो ये मेंटालिटी इतनी फैल गई है कि इंसान को भी यूज़ एंड थ्रो, जब तक बीवी अपने को खुशी दे रही है रखो, खुशी देना बंद हो गया थ्रो, यूज़ एंड थ्रो। हाँ, क्या बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। हाँ, एक बार देखा तो प्रेम हो गया, तुरंत शादी करना है, तुरंत अभी शादी करना है, शादी होकर पहला झगड़ा हो गया डिवोर्स देना है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे कितनी खुशी मिल रही है वहाँ तक गणित है, मुझे किसी मिलना बंद हो गया तो दुनिया में कोई भी हो उसको फेंक देना चाहिए, नया लाना चाहिए, जो मुझे खुशी देगा वो भी देना बंद हो गया उसको भी फेंक देना चाहिए। तो जो फेंका जा रहा है वो भी यही सोचती है या सोचता है कि उसको भी फेंक देना चाहिए जो मेरे लिए काम का नहीं है। लेकिन इंसान का जीवन ऐसा नहीं है। वो ब्राह्मण जो था, मतलब ऐसा हमारा कल्चर था कि परिवार के सदस्यों की तरह जानवरों को पालते थे, केवल गाय को नहीं, मैं केवल गाय का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन गाय के लिए नहीं, बकरियाँ थी, भैंसे थी, और बाकी ससे मतलब क्या खरगोश हुआ करता था और कुत्ते हुआ करते थे, जितनी भी बकरियाँ हुआ करती थी, वो सबको वो परिवार की तरह मानते थे। मेरे दो बेटे हैं, चार बेटे हैं, उस समय तो 8-9-10 बेटे भी हुआ करते थे, ये मेरा खुद का परिवार है और ये भी मेरा परिवार है, जो अपने जानवर के रूप में गाय गोठे में रहते हैं, मेरे आसपास में आंगन में रहते हैं। और ब्राह्मण हो या और किसी भी जाति का हो, जो गाय और जानवर रखता था उसको सबको खिलाने के बाद में वो खाता था खुद, एक प्रमुख के, कुटुंब प्रमुख के रूप में। तो जब गाय आके बोली कि ऐसा ऐसा मेरे पर बीती है, मैंने ऐसा वादा किया है, जाना पड़ेगा मुझे, मतलब नंबर वन तो गाय अपने वचन की पक्की है, ऐसा नहीं कि अच्छा हो गया मैं वहां से उसको उल्लू बना के भाग के आई, अभी मैं जाऊंगी नहीं, वहां पर जाऊंगी तो 4-5 लोगों को शस्त्र अस्त्र लेके जाऊंगी और शेर को भगाने का प्रयास करूंगी, नहीं, वो गाय भी ऐसी श्रेष्ठ तत्व वाली थी कि अगर वादा किया है तो वादा निभाना है। आजकल वादा किया मतलब तो तोड़ने के लिए होता है, वो खाली लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, इसलिए वादा किया जाता है कि मैं आपको आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा ऐसा वादा करते कि नहीं सब लोग, बोले आसमान के तारे मत तोड़ना, राशन लेके आना आज शाम को उतना भी काफी है, आसमान के तारे तोड़ के क्या करूंगा मैं। तो आजकल के वादे केवल तोड़ने के लिए होते हैं, और अगर कोई वादा निभाता है उसका पेपर में नाम आता है, इसने वादा निभाया लेकिन यहां पर गाय जिसको जिन जान से मारा जा रहा है, मतलब वो खाया जा रहा है, उस शेर का दिया हुआ वचन भी पालने के लिए तैयार है वो। तो मालिक क्या बोलता है, पहला बच्चा बेटा क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और मैं अपने आप को अर्पण करूंगा, मतलब बछड़ा जो है वो भी माँ के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। आजकल का कैसा है, माँ से और पिताजी से सारी शक्ति चूस लेते हैं, उनका देखभाल लेते हैं, उनका पैसा लेते हैं, उनके द्वारा सीखते हैं, उनके ही मेहनत के द्वारा बड़े हो जाते हैं, फिर उनको ही उल्टा उत्तर देते हैं और उनके खिलाफ सब काम करते हैं, उनका विद्रोह करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, उनके पैसे बर्बाद कर देते हैं, कोई परवाह नहीं करते इस बात की। और जैसे ही बुढ़े होते हैं माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, देते कि नहीं, अभी बहुत तकलीफ है ये बुढ़े आदमी दोनों बैठे हुए, इतना खर्चा है उनके ऊपर, इतना तकलीफ है, बार बार डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर रिपोर्ट लेके आ जाओ, फिर यहाँ लेके जाओ, फिर वहाँ लेके जाओ, फिर कंसल्ट करो, फिर एडमिट हो गए तो हॉस्पिटल में रहो, छुट्टी निकाल के CLPL खर्च करके कितना टाइम पास होता है इसके अंदर। हमको दिवाली में जाना है तो सब छुट्टी खत्म हो गई इनके इलाज में, तो अच्छा है कि उनको ओल्ड एज में रखो, किधर भी एक पैसा भर दो उधर और डाल दो, कभी कभी फ़ोन करो कैसे हो, नहीं तो करो ही मत, एक बोझा बन गया है माता पिता, अरे अभी कभी मरेंगे, कितना खर्चा है इनके ऊपर, और रखेंगे तो वो कैसा रखेंगे, नहीं इन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं किया, इसलिए थोड़ा रखो, पता नहीं क्या होगा आगे क्या मालूम, तो रखो वो प्रॉपर्टी नाम पे समझो कर दिया किसी माँ बाप ने गलती से, तो करते ही तुरंत फिर हरे कृष्णा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, दोबारा आना नहीं इधर। कितने लोग करते आजकल ऐसे, जिनके शरीर पर हमने दूध पिया है, जिनके लालन पालन से उन्होंने इतना त्याग दिन रात किया है, वो तो माता पिताओं को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या होगा उसके आगे। जैसे ही हम लोग अपने माँ बाप के साथ में ऐसे प्रस्तुत हो जाएंगे ना, अपने आप व्यवहार करेंगे, जब हम बुढ़े हो जाएंगे निश्चित रूप से आपके बालक आपको ऐसे ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि मेरे माँ बाप ने मेरे बुढ़े दादा दादी को क्या किया था, तो ये ऐसे ही करना होता है, ऐसा आदर्श आपने खड़ा करके रखा है उनके सामने। तो जब आप जवान हो, बच्चे छोटे हैं तो देख रहे हैं, जब आप बुढ़े हो जाएंगे, वो जवान हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, तो फिर वो क्या देखेंगे कि माँ बाप के साथ में ऐसे ही व्यवहार किया जाता है, जब तक काम है तब तक रखो, जब तक वो हम लोग काम पे जाते हैं तो बच्चे को संभालते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, पढ़ाई लेते हैं, तब तक रखो, जब ज़्यादा बोझ बन गए, मेडिकल का खर्चा बन गया तो उनको भेज दो। जब ये देखेंगे तब वो भी बच्चे बड़े होने के बाद में वही करेंगे हमारे साथ में। मैंने पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्लास में, कि जिस गाय को प्रेम मिला है वो दूसरों को प्रेम देती है, जिस इंसान को पहले प्रेम मिला है वो दूसरे को बाद में प्रेम देता है, पहले देना पड़ता है फिर बाद में आता है वापस। हमारे राजेश तलवार थे डायरेक्टर हॉस्पिटल के, हाँ, उनके घर में हम लोग एकदम भोजन करने गए थे, तो उनको अमृतसर से मम्मी का फोन आया तो वो थोड़ा एक्सक्यूज मी करके गए और फ़ोन लिया, और वो फ़ोन पे पता नहीं क्या बात हुई मम्मी और बेटे के बीच में, तो रोने लगे वो फ़ोन पे, और जाहिर ये था कि मम्मी भी वहाँ पर रो रही थी, समझ में आ रहा था कि इससे दोनों बात कर रहे थे। बहुत देर तक उनका चलता रहा, सब लोग देख रहे थे, हम वो देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, मेहमान लोग और उनके बेटे और उनकी पत्नी भी देख रही थी। फिर वो फ़ोन रख के फिर आँख पहुँच के वापस आए हमारे बीच में, तो हमने कहा प्रभु जी क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, वो हम लोग जब भी फ़ोन करते हैं तो रोते हैं एक दूसरे की याद में। और उन्होंने कहा उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई मुझे हम सब लोगों को, कि जब मेरे बेटे मेरी माँ का फ़ोन आने पर मुझे रोते हुए देखेंगे, तो जब वो मुझे फ़ोन करेंगे तो भी वो रोएंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे और वो जवान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को उनकी माता को माता के लिए रोते हुए देखा है प्रेम से, उन्होंने उनको इतना प्रेम दिया है कि अब वो अमृतसर में है, हम मुंबई में हैं, तो यहाँ से जब फ़ोन जाता है तो दोनों रोते हैं, हम भी रोते हैं, माता भी रोती है, ये हमारे बेटों ने देखा है, तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हम अमृतसर से फ़ोन करेंगे तो वो भी फ़ोन पर रोएंगे, पापा कैसे हो, याद आती है आपकी बहुत। तो जब आपने बहुत सारा प्रेम दिया है तो आपको प्रेम मिलता है, और अपने माँ बाप का आपने दुर्लक्ष किया है तो आपके ऊपर दुर्लक्ष किया जाएगा। कम से कम इस स्वार्थ से हमको अपने माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए कि हमारा उदाहरण देख के हमारी भी देखभाल की जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हट्टा कट्टा नहीं रहता है उम्र के बाद में। तो ये बालक बोल रहा है कि इस माता का दूध पीते आ रहा हूँ मैं, और आज इस माता की जिंदगी खतरे में है, पर मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैं जाके अपना नंबर लगाऊंगा, अब तुम रहो यहाँ पर। दोनों का बातचीत सुन के मालिक बोलते हैं नहीं तुम दोनों रहोगे मैं जाऊँगा, और बाद में क्या होता है तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं कुंड के पास, और शेर वहाँ रुका है वेट कर रहा है वो, और वहाँ पर भी तीनों बहस कर रहे कि मैं ये नहीं कह रहे कि तुम जाओ मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं मैं त्याग करने के लिए सब लोग स्पर्धा कर रहे हैं उधर। ये एक्चुअली कल्चर है, ये हमारा एक्चुअली आध्यात्मिक भारतीय कल्चर है, जिसमें दूसरों के लिए लोग त्याग करते हैं, खुद के लिए लोग कष्ट सहन करते हैं, और हम ये सब खो चुके हैं आजकल। तो ये तीनों का त्याग भावना देखकर वहां पर कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं तो शेर का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो कहता है खाना कैंसिल, मैं तीनों को किसी को भी नहीं खाऊंगा। जब शेर का हृदय का परिवर्तन होता है तो उसको लगता है अरे कितने महान जीव है लोग, मैं तो शेर के रूप में शेर की भावना से खाने को आया था उनको। जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उसको भी लगा कितना अच्छा उदाहरण है, तो क्या होगा अगर मैं एक बार खाना नहीं खाऊंगा, दूसरा किसी खा लूंगा किसी को। तो भगवान कृष्ण के होने से हृदय परिवर्तन होता है, जब तक हमारे जीवन में भगवान कृष्ण नहीं है तो हमारा हृदय वैसे रहता है, पत्थर की तरह रहता है, ना कोई भावना रहती है, ना कोई दुख रहता है, ना कोई सुख रहता है, ना कोई करुणा दया कुछ नहीं होता है। जब तक जीवन में कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, हाँ कोई किसी नाम से पुकारता होगा अलग अलग धर्म में, लेकिन जब तक वो भगवान हमारे जीवन में नहीं है, हमारा जीवन शुष्क है, मतलब ड्राई है, सूखा सूखा है, क्योंकि भावना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है उसके अंदर, कोई अनुभूति नहीं है, कोई अच्छे विचार नहीं है, कोई अच्छे प्रिंसिपल तत्व नहीं है उसके अंदर कुछ। शेर तो कैसा है, देख रहा है कि मेरा खाद्य है, मुझे खाना है बस। लेकिन वो शेर जैसे हृदय में भी परिवर्तन हुआ भगवान के होने से, उसको भी लगा कि अब छोड़ देते हैं इसको, दूसरे कहाँ जाके देखते हैं, यहाँ पर इतना त्याग की स्पर्धा हो रही है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं खाऊंगा। तो ये सुंदर लीला उस वन में हुई थी। तो बड़ी कुछ कथा नहीं है कृष्ण भगवान की, उसमें छोटी सी कथा है, लेकिन कितना बड़ा आदर्श है उसके अंदर हमारे लिए, कि जानवर भी हमारी प्रजा है। एक राजा था शिबी नाम का, हाँ वो शिबी नाम का राजा था, इतना महान राजा था वो। तो उसके अचानक दरबार में बैठा, दरबार में तो एक कबूतर भाग भाग के उसके गोद में आया, एकदम दरबार के अंदर। वो आश्चर्य हो गया, अरे आज सडनली कबूतर कहाँ से आया। थोड़ी देर में राजा विचार कर रहा था कि ये क्यों आया, उतने में एक होता ना क्या नाम उसका, हॉक ससाणा, बड़ा एक पंछी होता है, बहुत मांसाहारी होता है वो पीछे आया उसके, हाँ जब नहीं करना सुनते वक्त। तो वो पीछे पीछे आया तो राजा ने उसको रोका, उसने कहा आप इसको नहीं खा सकते। बोला क्यों नहीं खा सकता, मेरा खाद्य है वो। बोला नहीं मेरे शरण में आया है वो, और शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बोला अच्छा, वो आपकी प्रजा है उसकी आप रक्षा कर रहे हो, मैं भी आपकी प्रजा हूँ और मेरा वो खाना है और आप उसको रक्षा कर रहे हो और मेरे को भूखा रख रहे हो, तो मेरे को खाना दो फिर। तो राजा कहता है कि कबूतर का जितना वजन है उतना मांस मैं मेरे शरीर से निकाल के आपको खिलाता हूँ। कबूतर को पलड़े में रखा इस जगह पे और राजा ने तलवार लेके मांस काटना शुरू किया। अब इतना लगता है कबूतर का इतना होगा, उतना दे दिया, वो हिला ही नहीं कबूतर वहाँ से, मतलब वो पलड़ा ऊपर नीचे हुआ ही नहीं। तो राजा ने और दिया, फिर और दिया, फिर और दिया, ऑलमोस्ट सब शरीर नष्ट ही होने लगा उसका। तो जाके तलवार ताक डाल दिया और खुद जाके बैठ गया उसके अंदर, तब पलड़ा ऊपर नीचे हो गया, मतलब इक्वल हो गया। मतलब राजा ने एक कबूतर अपनी प्रजा जो शरणागत हो गई है उसको बचाने के लिए अपने आप को पलड़े में रख दिया पूरा। तो उस समय तुरंत वो कबूतर और वो हॉक यानी ससाना दो देवता प्रकट हो गए। तो राजा की जो महानता थी वो प्रकट करने के लिए उन्होंने नाटक किया था कि राजा अपनी प्रजा केवल मनुष्य को नहीं मानता है लेकिन जानवर पंछी जितने भी जीव हैं वो सबको अपनी प्रजा मानता है। उसका उदाहरण उन्होंने वहां पर दिखाया। ये असली राजा, ये असली प्रजा और ये हमारी संस्कृति है। तो इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि सारे जो जीव हैं वो सब भगवान के बालक हैं और उसके नाते वो सारे हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि जिसका पिता एक होता है वो भाई बहन होते हैं। केवल मनुष्य नहीं लेकिन जितने जीवों को भगवान ने जन्म दिया है वो सब हमारे माता पिता हैं, सॉरी अपने भाई बहन हैं। अगर ये हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो कोई युद्ध नहीं होगा। इराक और पैलेस्टीनियन और ईरान और इराक और हाँ यूक्रेन, यूक्रेन और रशिया, इधर चाइना जापान, इधर किधर भी युद्ध नहीं होगा। ये सब लोग सोचते हैं तुम्हारा है मेरा, तुम्हारा है मेरा। यहाँ पर तो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा है सब, तुम्हारा है सब, तुम्हारा है। एकदम उल्टा विचार इस दुनिया में आजकल फैल रहा है। कोई कृतज्ञता नहीं है, नो ग्रैटिट्यूड, हाँ धन्यवाद की भावना किसी के अंदर नहीं कि थैंक यू वेरी मच। लोग सब दूसरों से कुछ ना कुछ अपने लिए चूसना चाहते हैं और हर एक व्यक्ति इसी भावना में है, मुझे क्या मिलेगा और मैं कहाँ से क्या खींच लूँगा मेरे लिए। और इस घटना में, इस घटनाओं में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति सोचता नहीं कि उस पर क्या बीतेगी, आई डोंट केयर। जब किसी की छाती पर पांव रख के हम लोग अपने प्रगति की मंजिल आगे बढ़ते हैं तो वो सोचते नहीं कि मैं पांव रखने के बाद में क्या हुआ, कोई सोचता नहीं, हु केयर्स, मुझे किसी भी कीमत पर आगे जाना है, चाहे मैं किसी को कष्ट दूं या खुशियां दूं। लेकिन मोहम्मद पैगंबर जो है इस्लाम के, वो कहते हैं कि दूसरों की दुखों पर अपने खुशियों का महल मत बनाओ, दूसरों के दुखों के कदमों पर, सीढ़ियों पर पांव रख के अपनी यश की मंजिल मत चढ़ो, ऐसे उन्होंने कहा है, हदीस में कहा है, हदीस में, दूसरों के दुखों के ऊपर अपने खुशियों के महल मत बनाओ, क्योंकि जो दुख आपने दूसरों को दिए हैं खुशियों की मंजिल हासिल करने के लिए वो दुख लौट के आएंगे आपके पास। जो भी आपने दिया है वो लौट के आएगा आपके पास। प्रेम दिया है तो प्रेम लौट के आएगा, सम्मान दिया है सम्मान लौट के आएगा, मदद दिया है तो मदद लौट के आएगा, प्रेम दिया है तो प्रेम लौट के आएगा, संकट काल में मदद की है तो वो मदद भी आपके संकट काल में लौट के आएगी। हर चीज, अगर आपने द्वेष किया है तो द्वेष लौट के आएगा, अगर हिंसा किया है तो हिंसा लौट के आएगा। क्या बोलते हैं हमारे हिंदी में, जो तलवार से मारता है वो तलवार से मर जाता है, जो आतंकवाद करता है वो आतंकवाद का ही बलि बन जाता है, खुद भी आतंकवाद से ही मर जाता है। इसलिए अगर हमने प्रेम दिया है तो प्रेम मिलेगा, सम्मान दिया है सम्मान मिलेगा। ये जीवन का एकदम सिंपल रूल है। अगर कोई बड़ा साहब है कंपनी का और वो सिक्योरिटी सबको जाकर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग खुद बोलकर आएगा तो सारे लोग उसको दिल से अपने आप खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलेंगे। लेकिन जब अगर सिक्योरिटी उसको गुड मॉर्निंग बोलेगा और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वे ज़बरदस्ती खाली उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, दिल से नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो रूल है ना। अब क्या है, जब वो बदली हो जाके निवृत्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो उसको कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा उसको, क्योंकि वेट कर रहे हैं कभी इसको गुड मॉर्निंग करना बंद करें हम, क्योंकि इसके लायक का नहीं ये व्यक्ति है, इतना गर्व है इसके अंदर, इतना अधिकार है तो इतना हमको बिल्कुल ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, केवल अपना अधिकार को जमाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा साहब है और वो सबको हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोलता है तो सब लोग उसको हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोलेंगे, वेट करके सर हरे कृष्णा ऐसे बोलेंगे, क्योंकि सब लोगों को, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो खरगोश हो घर का आपका कुत्ता हो, या इंसान हो, या पत्नी हो, या बच्चा हो, सबको प्रेम की जरूरत है। कुत्ता भी आता है ना रात को, हम लोग घर लौट के आते हैं तो कुत्ता भी आके हमको पूछ दबाता है, हमारे ऊपर घुमाता है, और बिल्ली भी शरीर लगा के ऐसे चले जाती है प्रेम से, म्याओं म्याओं करती है, वो भी प्रेम को अपेक्षा कर रही है। आप भी उसको प्रेम से हाथ घुमाएंगे उसके ऊपर तो वो भी बड़े प्रेम से आपके पास आके बैठ जाएंगे, आपके गोद में ही सोने का प्रयास करेंगे। अगर उनके अंदर प्रेम की जरूरत नहीं होती तो ऐसा क्यों करते, वो अपना काम करके चले जाते, खाना हो गया, पीना हो गया, दूध दे दिया उसको, चावल भी दे दिया, ब्रेड भी दे दिया, सब कुछ हो गया, अभी फिर भी वो नींद से उठकर आएगा और लेट आया हुआ मालिक को अपना शरीर लगाएगा और म्याओं म्याओं करेगा और प्रेम की अपेक्षा करेगा। करते हैं ना सब लोग घर में, हर जीव करता है। तोता भी आके तुरंत आवाज़ करेगा जब आप घर पे आओगे तो, वो पंछी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन सब जीव को प्रेम चाहिए और सब जीव प्रेम के भूखे हैं। आप काम पे भी आते हो और आपके कोई बॉस है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो जब पहले अपने सबॉर्डिनेट पर प्रेम करते हैं तो सब लोग उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं कि नहीं हमारे बॉस ने हमको इतना मदद किया है, जब जब मेरी ज़रूरत थी तब तब मुझे कितना सहायता किया है, सपोर्ट किया है, अब मैं उनके लिए सपोर्ट करूंगा। जब भी उनके डिपार्टमेंट का कुछ टारगेट होगा, कुछ चैलेंज होगा, कुछ डिफिकल्टी होगी तो मैं उनका हाथ बटाऊंगा, क्योंकि मुझे उन्होंने निजी लेवल पर कितना सहायता किया है। तो देने में हमको प्राप्त होता है। तो ये सुंदर बहुला वन की जो कहानी है, बहुला गाय की, हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सबक सिखाती है। इसी जगह पर फिर चैतन्य महाप्रभु आए थे, बहुत सुंदर कथा है उसकी, मैं आपको बताता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो आनंद में विभोर हो गए और कोथाई कृष्णा ऐसे पूछने लगे, किधर है कृष्ण, किधर है कृष्ण। अभी आप सबको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे मैं बताऊँगा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और वो द्वापर में कृष्ण के रूप में आए थे और कलयुग में वही कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त बनकर आए थे और भक्त बनकर अपने 48 साल के लीलाओं में 2 महीने वो ब्रज में रहे, वृंदावन में आए, और उस 2 महीने में उन्होंने पूरे ब्रज में भ्रमण किया और सब जगह कीर्तन किया हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वो बहुलावन में आए तो प्रेम से विभोर हो गए और जितनी भी वहाँ पर गायें थी वह सब आकर उनके शरीर को चाटने लगी। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 17वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन आया हुआ है, बहुत सुंदर, कि सब गायों ने मिलकर महाप्रभु के शरीर को चाटना आरंभ किया। कुछ गायें घास खा रही थी, वो घास खाना बंद करके उनको देखने लगी, उनके मुँह से घास जो था वो गिरने लगा, वो एकटक उनको देखने लगी। सब गायों ने आवाज़ करना शुरू किया, उनके शरीर में अत्यानंद का भाव प्रकट हो गया। कुछ गायें वैसे ही देखते रह गई, कुछ गायें बेहोश हो गई, महाप्रभु उनको देखते रहे। फिर उन्होंने कोथाई कृष्णा करके पुकारा तो उतने में वहाँ से वो आए, क्या बोलते उसको, हिरण। और हिरण आके सब चारों ओर से उनको घेर कर उनको चाटने लगे। तो वहाँ से मोर आए, उन्होंने अपनी अपनी सुंदर सुंदर आवाज़ में आवाज़ करना शुरू किया, ध्वनि। फिर कोयल आई, फिर तोता आए, उन्होंने भी अपना मधुर संगीत शुरू किया। तो सब पेड़ जो थे वो भाव विभोर हो गए। तो पेड़ ने अपना भावना कैसे व्यक्त किया, कोई आइडिया आपको? पेड़ थरथराए ऐसे और उनके फूल और पत्ते सब झड़ गए जमीन के ऊपर जहाँ पर महाप्रभु खड़े थे, जैसे मानो वर्षाव कर रहे हैं वो। हाँ, जैसे हमारे रोमांच खड़े होते हैं ना, ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं, वैसे उनके शरीर के बाल के रूप में उनके पत्ते और फूल जो है वो झड़ गए और नीचे गिर गए, मानो वो भगवान के चरणों में फूल अर्पण कर रहे हैं। इतने में सारी भूमि भी भाव विभोर हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने गाय, हिरण, तोता, कोयल, मोर, ये सबके सानिध्य में सबको बोला चैंट हरे कृष्णा। तो उन्होंने कीर्तन शुरू किया तो सभी जानवर और पंछी हरे कृष्णा कीर्तन में सम्मिलित हुए और बहुत सुंदर जोरदार कीर्तन हुआ। सब पंछियों ने, प्राणियों ने मिलकर उनके साथ में कीर्तन किया, गर्दन उठा उठा कर दो आगे के पैर उठा उठा कर सब लोगों ने हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जब आगे जाने का प्रयास करने लगे तो सब जानवर उनको छोड़ने नहीं दे रहे थे, सब उनको अपने हाथ पांव से पकड़ने का कोशिश कर रहे थे। तो जो ग्वाला था उन्होंने बहुत मुश्किल से गायों को छुड़ाया, पंछियों को और हिरणों को बाजू में किया और महाप्रभु को आगे जाने दिया। सब उनको ताकते रहे जानवर और पंछी। फिर आगे गए तो एक पेड़ के नीचे चले गए तो उस पेड़ के ऊपर एक तोता और एक मैना बैठे हुए थे। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनना सब लोग। तो तोता और मैना पेड़ पर बैठे हुए हैं। तो तोता अब मैना से कह रहा है, मेरे कृष्ण जो है ना वो मदन मोहन है, यानी कि जो मदन है ना, मदन यानी कि कामदेव, उसको भी मोहित करते हैं वो। अच्छा, तो मैना कहती है वो मदन मोहन तब तक है जब तक राधा उनके बाजू में खड़ी रहती है। जब राधा चली जाती है तो केवल मदन रहते हैं, वो मोहन नहीं रहते। मदन को मोहन मोहन करने वाले नहीं रहते बनते वो। जब तक राधा साथ में है तभी वो मदन मोहन जैसे सुंदर दिखते हैं। मतलब क्या हुआ, उनका सौंदर्य तब बढ़ता है जब राधा रानी उनके साथ में खड़ी रहती है। ऐसे सारी यानी मैना बोल रही है। फिर तोता क्या बोलता है, मेरे कृष्ण ने एक छोटी सी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठाया। तो मैना क्या बोलती है, हाँ राधा रानी ने अपनी नज़रों से उनको शक्ति दिया था इसलिए वो गोवर्धन को उठा पाए। अच्छा, अगर उन्होंने अपने नज़रों से शक्ति नहीं दिया होगा होती तो कैसे उठा पाते वो। तोता कहता है, मेरा कृष्ण जो है वो सारे विश्व का आत्मा है, सारे विश्व का जान है वो। तो वो कहते हैं, सारे विश्व की जान हमारी राधा रानी है। उस परमात्मा जो सब विश्व का जीव है उसका जीव हमारी राधा रानी है। तो तोता बोलता है कि मेरा कृष्ण जो है उनके शीश पर बहुत सुंदर मोर पंख का मुकुट बनाया हुआ है। तो मैना कहती है कि वो जो मोर पंख है ना उस पर राधा का ही नाम लिखा रहता है। जो मोर पंख वो धारण करते हैं उस पर राधा का ही नाम लिखा है। तोता कहता है कि और एक बात, वो जो मोर पंख है ना हमेशा दाई और बाई और झुका रहता है, टिल्टेड ऑन लेफ्ट साइड। तो मैना कहती है क्योंकि वो राधा रानी के चरण चुमना चाहता है इसलिए वो लेफ्ट साइड में झुका रहता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में राधा रानी खड़ी रहती है। फिर तोता कहता है कि मेरे कृष्ण जो है ना वो चंद्र जैसे हैं। तो मैना कहती है कि उस चंद्र को अपने जाल में राधा रानी ने फंसा लिया है। फिर तोता कहता है कि इस प्रकार से वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, आओ चलो मिलकर दोनों का गौरव करें। He says that there is no need of quarreling like this uselessly. Let us glorify the youthful couple together. तो मैना कहती है, I happily agree to this. तो ये सुंदर लीला बाहुला वन में हुई और गोविंद लीलामृत नाम के ग्रंथ में भी इस लीला का बहुत विस्तार में वर्णन दिया है। हाँ, वो भी सुनने का प्रयास करेंगे। तो इसमें गोविंद लीलामृत में वो जो तोता है वो कहता है कि मेरे जगमोहन यानी कृष्ण जो है उनकी सुंदरता इतनी अगाध है कि वो बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, उनका संयम तोड़ देता है और वो आकर्षित हो जाते हैं। लक्ष्मी भी अपना विष्णु के चरण छोड़कर वहाँ भाग के आती है उनको देखने के लिए। उनकी शक्ति इतनी अगाध है कि गोवर्धन को बच्चे की तरह एक खिलौने की तरह उठाते वो। उनके अंदर अनलिमिटेड गुण हैं और सब जीवों को मोहित कर लेते हैं। तो सारी कहती है, मतलब तो मैना कहती है, हे शुक, यानी कि तोते को पुकार रही है कि राधा रानी का जो दिव्य प्रेम है, सौंदर्य है, नृत्य है, उनकी शांतिमय स्वभाव है, उनका जो संगीत का रस है, संगीत की कुशलता है, उनके अंदर मर्याद गुणों का सौंदर्य है, वो काव्यमय है, बहुत कविता लिखती है, और उनका जो वक्तृत्व है, कहने की शक्ति जो है बहुत ही आकर्षक है कि श्री कृष्ण का हृदय भी वो छीन लेती है, जो पूरे विश्व के हृदय को छीन लेते हैं उसका हृदय वो राधा रानी छीन लेती है। फिर वो कहते हैं, प्रिय मैना, मदन मोहन का जय हो, मदन मोहन की जय हो, जो काम भी कामदेव को भी छीन लेता है, आकर्षित कर लेता है, जो एक मुरली को बजाता है, मुरली को लेकर घूमता है, उस मुरली को बजते हुए सारे विश्व को आनंद प्राप्त होता है, गोपियां भी भाव विभोर हो जाती है। इस प्रकार से आगे बहुत लंबा वर्णन है उसका। श्रीमान महाप्रभु बड़े ध्यान से इनका संवाद सुन रहे थे और उसका आस्वादन कर रहे थे। आगे भी जाकर जब वो सबसे पहले मथुरा में आए थे, तभी भी वो जब भी चल रहे थे तो अचानक उनके उंगली पर एक तोता और एक मैना आके बैठ जाती है, और उनका भी संवाद का वर्णन आचार्यों ने किया है। तो ये सुंदर सुंदर स्थान जो है ये ब्रज में हैं, और आज भी वहाँ पर आप जा सकते हो और वहाँ पर जो लीलाएँ हुई हैं वहाँ पर बैठ के श्रवण कर सकते हो। क्या मिलता है हमको ये सब करके? अभी भी हमने काफ़ी समय बिताया इसमें। जब आप ये सुन रहे थे तब आपका जीवन में कुछ भी दुख होगा तो उस समय के लिए आप भूल गए थे ना, कि याद कर रहे थे कि जीवन में क्या हो रहा है। कृष्ण भगवान की कथाओं को सुनने के बाद में केवल उस समय के लिए नहीं, वास्तव रूप में जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। गोपियाँ बड़ी व्याकुल होकर जब भगवान के लिए पुकार रही थी, जब भगवान चले गए थे, अंतर्धान हो गए थे, तो वो विरह में उनको पुकार रही थी, वो कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्म शापहम। वो कहते हैं कि आपकी कथाओं को याद करते ही सारी पीड़ाएं नष्ट हो जाती है, सारे कष्ट, सारी यातना, सारा दुख जो है वो सब मिट जाता है। जो हमेशा आपको याद करता है, आपकी लीलाओं को याद करता है, आपकी कथाओं को याद करता है, आप जहाँ गए हैं वहाँ पर जाता है, वो व्यक्ति को दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसकी आत्मा, उसका हृदय भगवान की याद से फिर घिर जाता है पूरा। और जिस जगह पर भगवान का अस्तित्व है वहाँ पर दुख, अज्ञान, अंधकार, पीड़ा, यातना कुछ टिकती नहीं है। जन्म मृत्यु का चक्र वहाँ टिकता नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा वहाँ टिकती नहीं है, माया का प्रभाव वहाँ पर नहीं होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में दुख से मुक्त होना है तो श्री कृष्ण भगवान को, उनकी भगवान की लीलाओं को जीवन में स्वीकार करना चाहिए। और अगर आप उस जगह जाते हो जहाँ पर लीला हुआ है तो आप और अपने जीवन में सफल हो जाओगे और जीवन से दुखों से मुक्ति पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन के दुख नष्ट नहीं होंगे, दुख तो चलते रहेंगे। जब तक आप दुनिया में हो, इस बद्ध शरीर में हो, जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा है, तब तक आपको दुख आएगा, लेकिन उस दुख का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। जैसे समझो आपका पॉकेट किसी ने मार लिया 100 रुपया, दूसरे किसी का भी मार लिया, तो एक आदमी बहुत रोएगा, एक आदमी बोलेगा क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है, ऐसा बोले। तो एक आदमी को बहुत दुख हो रहा है उतना लॉस होने के बाद में, एक आदमी को ठीक है बोल रहे हैं। इसका मतलब एक आदमी को उस दुख का परिणाम नहीं हो रहा है, एक आदमी को बहुत परिणाम हो रहा है। उस प्रकार से भगवान का भजन करने से, उनकी लीला सुनने से, कथा सुनने से जीवन के जो आसपास हमारे दुख चल रहे हैं उसका प्रभाव हमारे पर नहीं होगा, और उनके होते हुए भी आप आनंद का अनुभव कर सकते हो। ये रहस्य जो है ये भक्ति का रहस्य है। इसलिए हम लोग सब लोगों को विनती करते हैं, आप भगवान के नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जाते समय सब लोग मन में ये निश्चय करके जाना कि हमारे जीवन में जितने भी लोग हमारे जीवन में आते हैं, खास करके माता पिता, भाई बहन, परिवार के सदस्य जो हैं, उनके ऋण को कभी भूलना नहीं। आप कभी भी स्वार्थी रूप से उनसे व्यवहार मत करना, क्योंकि हम सब लोग असहाय रूप में उनके गोद में थे एक बार, ना हमको खाने का ठिकाना था, ना पता नहीं कहाँ से द्रव्य निकल रहा है, ना टट्टी पेशाब निकल रहा है, क्या हो रहा है, उल्टी हो रही है, कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है। ऐसे बिल्कुल असहाय अवस्था जिसमें बोलने को भी नहीं आ रहा था हमको, चलने को नहीं आ रहा था, बोलने को नहीं आ रहा था, अपने आप को स्वच्छ करने की शक्ति नहीं है, अपने आप को खिलाने की शक्ति नहीं है अपने हाथ में, ऐसे असहाय अवस्था में अनेकों साल तक उन माता पिता ने निरपेक्षता से दिन रात इकट्ठा करके, कोई छुट्टी नहीं, कोई काम में व्यवधान नहीं, कुछ नहीं, निस्वार्थ रूप से अपने आप को नछावर करके हमको बड़ा किया था। और वही कुछ समय के बाद बालक की तरह बन जाते हैं, उसी तरह असहाय बनते हैं जैसे हम असहाय उनके गोद में थे। लेकिन जब वो असहाय बन जाते हैं तो हम उनको दुत्कारते हैं, जब हम असहाय थे तो वो अपने फूल की तरह हमको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। तो भक्त बनने का मतलब ये नहीं खाली हरे कृष्ण जप करना और शास्त्र पढ़ना, हाँ अपने कर्तव्यों को बड़े कृतज्ञ भाव से निभाना, यह भी भक्ति का एक लक्षण है। अगर वो भक्त हैं और हमारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, हाँ, और हम कहते हैं कि नहीं हमारे मंदिर में सेवा है, हम हॉस्पिटल में उनको देखने को नहीं जा पाते, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भक्त होते हैं, जब करते हैं सब कुछ कर, दीक्षा भी लिया हुआ है, और जब माता जी एडमिट होती है यहाँ पर तो उनको दवा देने के लिए देखने को भी नहीं आते इधर, और डिस्चार्ज के समय आ जाएंगे तो वो पूछे आप क्यों नहीं आते हैं, बोलते प्रभु जी मंदिर में सेवा है ना हमारी। अरे वो भगवान क्या कृपा करेंगे आपके ऊपर, जिसने आपको इतना असहाय अवस्था में, जब मांस के गोले की तरह थे आप, इतना त्याग करके आपको बड़ा किया उसने, और वो बीमार होके अभी बुढ़े होके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो तुम मेरी सेवा करने क्या कर रहे हो वहां पर आके, जाओ उसकी सेवा करो पहले जो आपके सामने जीवित रूप में खड़ा है, फिर मैं तुम्हारे स्वीकार सेवा स्वीकार करूंगा। भगवान बड़े भावुक हैं, हाँ भगवान के भी माता पिता हैं, भगवान का भी परिवार है, और उन्होंने भी अपने माता पिता का बहुत बढ़िया सेवा किया है, तो ये नहीं चाहेंगे आपसे कि आप मेरा नाम जपते हो तो आपको माता पिता की सेवा माफ है, आप उनको दुर्लक्ष कर सकते हो। हर एक व्यक्ति को चाहे वो भक्त हो या नहीं हो, कभी माता पिता का ऋण भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे जानवर जितने भी होते हैं ना, आप देखो जन्म होते ही अपने आप अपना अपना देखभाल करने लगते हैं, और चिपकली का बच्चा जब जन्म लेता है ना तुरंत पहला मक्खी खा लेता है, इंसान का बच्चे को बहुत टाइम लगता है अपने हाथ से अपने बल पे खाना कमाने के लिए, 20-25 साल के बाद में अपने पाँव पे खड़ा होता है, तब तक माता पिता दिन रात मेहनत करते रहते हैं उनके पीछे। एक इंसान का बालक ऐसा होता है, जिराफ का बालक जन्म लेता है ना, जिराफ इतना ऊंचाई से जन्म लेता है, उसके बाद उसको लात लात मार मार के खड़ा करता है, पहले तुरंत अपने आप खड़ा होकर घास खाने लगता है वो बालक। केवल इंसान का बालक ऐसा है जिसको बहुत टाइम लगता है अपने आप पे खड़े होने के लिए, और वही इंसान का बालक इतना कृतज्ञ हो गया है कि जैसे ही बड़ा हो जाता है माँ बाप को एकदम ठुकरा देता है वो, कैसा हम लोग है ना, भगवान ने इतना हमको सुविधा दिया, इतना बुद्धि दिया है, इतना वचन दिया है बोलने के लिए, वाचा दिया है, हाँ इतनी कलाएं दिया है, इतना अच्छा अच्छा भोजन दिया है, घर कपड़े और घर रहने की व्यवस्था किया है, सब कुछ व्यवस्था किया है, फिर भी इंसान इतना कृतज्ञ हो गया है कि जो माँ बाप ने हमारे जिंदगी निछावर कर दिया उनको हम लोग खुद को ही निछावर कर देते हैं, त्याग कर देते हैं उनका। तो कम से कम आज ये बहुला की जो कहानी हमने सुनी, कैसे वो अपने को त्याग करने को तैयार थे दूसरों के लिए, उस तरह से कम अपने माताओं पिताओं के लिए हमको देखभाल करने का प्रयास, जो हमारा ऋण है वो चुकाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि माता पिता का ऋण बालक कभी भी नहीं चुका सकता, एक भगवान का ऋण, एक देवताओं का ऋण, और तीसरा गुरु का ऋण, और चौथा माता पिताओं का ऋण, ये कभी भी जीव अपने बेस्ट कैपेसिटी में भी उसको चुका नहीं सकता। आप कुछ भी करोगे फिर भी आप ये सोचना नहीं कभी कि मैंने ऋण चुका लिया है मेरा, कभी भी सोचना नहीं चाहिए आपको, वो नहीं चुका सकते। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रिस्पॉन्स प्रेम का प्रतिसाद देने का प्रयास कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन चुका नहीं सकते उसको, और ऐसे ही मानने में हमारी धन्यता है कि हमने नहीं चुकाया, और हमको कोशिश जरूर करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस कर्तव्य में पूरा उतरता है भगवान उस पर जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति है जो मिला है उसको दोबारा लौट के देना, देखभाल केयर के रूप में। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।